सर्जी में कृष्णा जब जन्म होता है तब सर्जी शुरू होता है क्या?
संबत एक 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 कब कहेंगे? संबत एक एक की शुरुआत संगम में होगी या सत्युग में होगी? सत्युग में तो स्त्री होती ही नहीं है, तो दिन महीना तारीख की शुरुआत भी नहीं कहेंगे। स्त्री कहां बनती है? इस दुनिया में बनती है। तो संबत एक 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 तब कहेंगे जब नरक की दुनिया के बीच बाप आकर के स्वर्ग का वर्षा देते। कब? और वो स्वर्ग का वर्षा एक्यूरेट पुरुषार्थ करने वाले आत्माओं के संगठन को मिलेगा या पहले सबको मिल जाएगा? एक्यूरेट पुरुषार्थ करने वाली आत्माएं कितनी होंगी? 9 लाख होंगी। एक्यूरेट पुरुषार्थ करने वाली प्रजावर्ग की नहीं होंगी? प्रजावर्ग वाली तो पुरुषार्थ करती नहीं है, राजयोग सीखती नहीं है। 16108 में तो दास दासियां बनने वाले ढेर हैं, उनको तो एक्यूरेट पुरुषार्थ करने वाला कहेंगे ही नहीं। 108 में सब धर्म के घुसे हुए तो 8 ही हैं जो धर्मराज की सजाएं नहीं खाते हैं, एक्यूरेट पुरुषार्थ करते हैं। तो उनका संगठन जो तैयार होता है, उससे जो परिवार की इकाई तैयार होती है नई दुनिया में, वहां से कहेंगे संबत एक एक एक। धर्म का झाड़ है, उसमें सब 84 जन्म लेने वाले थोड़े ही हैं, आए बाप आए एक धर्म एक राज्य की स्थापना करने के लिए और का विनाश कर देते हैं। तो विनाश किसका होता है? बाप तो आए हैं, राज्यों की पढ़ाई पढ़ाए रहे हैं, लेकिन पढ़ने वाले सब एक जैसे हैं क्या? है? पढ़ने वाले तो नंबर वाले, तो अनेक धर्मों की स्थापना हो जाती। जो एक्यूरेट पढ़ाई पढ़ने वाले हैं और उनके जो फॉलोअर्स हैं, वो ही सनातन धर्म की स्थापना में सहयोगी बनते हैं। पढ़ाने वाला एक, पढ़ने वाले अनेक, फिर एक ही पढ़ाई पढ़ाते हैं सबको। ऐसे भी नहीं कि कोई को अलग अलग पढ़ाई पढ़ाते हो, फिर वैरायटी क्यों बन जाते हैं? अरे स्कूल में भी सब एक जैसे मार्क्स से पास होते हैं क्या? पढ़ाने वाला तो एक ही टीचर होता है, फिर एक जैसे पास होते हैं क्या? फर्स्ट क्लास पास हो जाते हैं सब, नहीं होते। ऐसे ही यहां अनेक धर्मों की स्थापना स्वतः ही हो जाती है। पढ़ाई तो सबके लिए है, ऐसा तो एक भी नहीं होगा जो आत्मा अपन को न समझ करके जाए। बेसिक नॉलेज तो कम से कम सभी लेंगे क्या? कि मैं आत्मा बिंदी, हम आत्माओं का बाप शिव ज्योति बिंदु भी बिंदी। दूसरे धर्म की आत्माएं भी इस बात को समझ करके ही जावेंगी। जो गहरी नॉलेज है वो सब नहीं उठावे और न बाप को पहचानेगी। मैं जो हूं, जैसा हूं, जिस रूप में पार्ट बजाए रहा हूं, दूसरे धर्म के लोग थोड़ी पहचान पाते।
वो सब राजा राजा बनना है, पर वो सेकेंड नारायण में सब आधार भूत है। वो जो रुद्रमाला का साई अंग्रेजी और सचिव के कृष्ण तो राजा राजा का क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद सेकेंड नारायण थर्ड नारायण चलता है और देवता में लास्ट थ्री वो बीज रूप का वो जो है करता है। वो दूसरा सब राजा नहीं बनता है, पर बोलता है कि रुद्रमाला का सब राजा बनता है।
रुद्रमाला की जो है वो वास्तव में रुद्र तो 11 ही है क्या? रुद्र 11 गिने जाते हैं। एक महारुद्र है, टोटल मिलकर के 12 हैं। उन 12 के फॉलोअर्स भी होंगे, यथा राजा तथा प्रजा। फिर जो दूसरा ग्रुप होता है 12 का, वो उतना श्रेष्ठ पुरुषार्थी थोड़ा ही होगा जो पहला ग्रुप होता है। तो उनकी प्रजा भी यथा राजा तथा प्रजा। ऐसे ही लास्ट ग्रुप है 9वां, तो कम पुरुषार्थी है तो उसके फॉलोअर्स भी कम पुरुषार्थी होते। इसलिए माला में 9 प्रकार के ग्रुप बन जाते हैं। वो माला ही ये साबित करती है कि कोई ऊंचा संगठन है और कोई नीचा संगठन है, कोई दाई ओर का संगठन है और कोई बाई ओर का संगठन है। अब यहां स्थापना किसकी होनी? असल सूर्यवंशियों की स्थापना होनी है या डिफेक्टेड की होनी है? असल सूर्यवंशियों की स्थापना होनी है, बाकी तो रुद्रमारों को एडवांस पार्टी कहा जाता है। एडवांस पार्टी में भी सदगुरु निंदा कराने वाले मणके हैं या नहीं है? वो मणके नीची कोटि के संगठन में वाले मणके में मणकों में जाएंगे या उच्च कोटि के मणकों में जाएंगे? इसलिए अनेक धर्मों की स्थापना हो जाती है। सारे झाड़ का फाउंडेशन जैसे कि अभी पड़ रहा है,
माउंट आबू में जो हड्डी होगा और उसी संगठन में साढ़े चार लाख आत्माएं आते और जाते रहेंगे। संगठन में एक दो करके आएंगे और फिर वापस दुनिया में जाएंगे। ये कब की बात है बाप? संघ में ही कृष्ण प्रत्यक्ष होने के बाद की बात है या उससे पहले भी?
शांति धाम और सुखधाम के गेट एक साथ खुलेंगे या आगे पीछे खुलेंगे? जब शांति धाम सुखधाम के गेट एक साथ खुलेंगे तो संगमुखी कृष्ण प्रत्यक्ष नहीं होगा?
सब समझेगा। ऐसे ही चर्चा की तरफ वो भी आगे जाते जाते वही करेंगे। पर अभी जो वैष्णवी देवी आई है तब वो तो सारे कितना लोग समझेगा, जो सभी क्षत्रियों के नौ लाख समझेंगे ना सब समझेंगे।
नौ लाख में तो साढ़े लाख साढ़े चार लाख तो सूक्ष्म शरीरदारी है, उनके समझने न समझने का तो बात ही नहीं है। बाकी जो साढ़े चार लाख है वो भी अलग अलग धर्मों से कनेक्टेड है, एक धर्म के बीच तो है नहीं। जो और धर्मों के बीच है वो पूरे चौरासी जन्म लेंगे क्या? बल पहले जन्म में आएंगे लेकिन लास्ट में जाके जन्म लिया, सौ डेढ़ सौ साल, सौ साल सवा सौ साल कम हो गए, तो उनको पक्का देवी देवता सनातन धर्म का कहेंगे? लेकिन नाम मात्र कहने के लिए चौरासी जन्म ले लिए, पड़ जाता है।
अभी बड़ा संदेश नहीं आए तब आपके सुबह नहीं
है, ऐसी जो है
फिर भी उत्तम मित्र वैष्णव करने से
है,
उत्तम मित्र वैष्णव के करने से उत्तम से तो मदद करता है, फिर भी उत्तम क्षत्रिय है वैष्णव ब्राह्मण है, क्योंकि शास्त्र लिखा उत्तम
ब्राह्मण थे थोड़े ही कौन दिन ले तो क्षत्रिय थे। हाँ जी,
फिर भी खातुन लिखा विश्वम फिर सब बनाया
है,
फिर सब विश्वम
है,
फिर सब क्या मिल गया माँ बाप को न सब का लग
गया, लटक गया, न स्वर्गवासी हुआ न नीचे आया न ऊपर गया, तो दुर्गति हो गई
बिल्कुल
है।
मंदिर में प्रतिमा बना रहे हैं बच्चे विधि बनाने के लिए, मगर अभी तो मालूम है कि अभी शायद 30 साल में तो 40 साल ही और रहेगा विनाश के लिए, इसलिए जो जो बिल्डिंग बनाता है वो मजबूत बनाने का ईट और लगा के तो टेम्पररी बना सकते हैं ना, जैसा जापान में करता है टेम्पररी क्या प्लाईवुड ऐसा करके कर सकते हैं,
हाँ घास फूस की भी डाल सकते हैं, राजपूत की झोपड़ियाँ डाल सकते हैं, डाल सकते हैं ना,
डाल सकते हैं,
लेकिन जमीन तो बहुत कॉस्टली मिलती है, झोपड़ियाँ डालने के लिए तो लंबी चौड़ी जमीन चाहिए, और कंपिल में तो तंबाकू पैदा होती है, जमीन का भाव ही बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो जो जमीन है उसी के अंदर कई मंजिल का बना देने में फायदा है यार, लंबी चौड़ी जमीन खरीदने में फायदा है, है?
मल्टी स्टोरी करने से,
मल्टी स्टोरी करने से फायदा है ना, तो फायदे का लाभ उठाना चाहिए।
माँ बट्टी बट्टी चक्कर है वो बनाने का क्या,
हर स्थान का अपना तपस्या का प्रभाव होता है, माउंट आबू में जो तपस्या हुई है वो बेसिक नॉलेज की हुई है, लेकिन शुरू से लेकर के अब तक चाहे बेसिक नॉलेज वाले हों चाहे एडवांस नॉलेज वाले हों सबका बुद्धि का कनेक्शन तो माउंट आबू से रहा है ना, तो वो तो महामधुवन बनेगा, लेकिन जो बोला है जहां जहां श्री मधुवन बनावे वहां वहां बाप दादा आवेंगे, मधुबनों में भी कोई मधुबन ऐसा होगा ना जहाँ विशेष याद की यात्रा का प्रभाव और सात्विक स्टेज का हो। माउंट आबू में अभी जो तपस्या हो रही है और ब्रह्मा बाबा के समय में जो तपस्या हुई थी उसमें फर्क नहीं है, बहुत फर्क है, ऐसे ही एडवांस में
भी बोल रहा है, उन्होंने भी बोला वो भी तो स्थान विशेष है
दिल्ली के लिए, तो ये बोला है कि दिल्ली परिस्थान दिल्ली कब्रस्तान, दिल्ली स्वर्ग की भी राजधानी है तो दिल्ली नरक की भी राजधानी है। दिल्ली एक ऐसा शहर है जहां का प्रभाव सारी दुनिया के ऊपर पड़ता है। एक दिल्ली ही ऐसा शहर है जिसके ऊपर सब धर्म वालों ने राजाई की है, सब धर्म वालों ने आकर के अपनी कैपिटल बनाई। दिल्ली जैसे सारे विश्व की मां है, जगदम्बा है। तो जगदम्बा का ओरिजिन भी कहां से होता होगा? दिल्ली से ही होता है। दिल्ली का मौसम खराब होता है तो सारे भारत का मौसम खराब होता है। दिल्ली का मौसम सुधरता है तो सारे भारत का मौसम सुधरता है। इसी दिल्ली के ऊपर सारा मदार है। इसलिए बोला एक के पतित बनने से सब पतित हो जाते हैं, एक के पावन बनने से सब पावन हो जाते हैं। यथा राजा तथा प्रजा होगी।
ठीक बोले से प्रजापिता तो पावन बन गया, क्यों सब फॉलो नहीं करते, क्यों माता का पतित है?
वो तो शिव है ना, प्रजापिता है, उसमें तो शिव प्रवेश है ना, उसकी तो बात ही अलग। समाज में, संसार में, सभी देशों में जास्ती पतन माताओं का हुआ है या पुरुषों का जास्ती पतन हुआ है? तो जिसकी जास्ती गिरती कला हुई हो उसी ऊपर जास्ती ऊंचा उठना है। पुरुष इतने दुखी नहीं है, माताएं जास्ती दुखी है। तो ज्यादा दुख भोगती है तो ज्यादा सुख नहीं भोगना चाहिए। इसलिए जगदम्बा जैसे बीज है, सब माताओं की माता है, रावण की जेल में भी जाती है सबसे जास्ती वो, तो राम के राज्य में भी सुख में सबसे जास्ती वो भोगती है। और जगदम्बा भी कौन है? वास्तव में ये ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा है, परंतु तन पुरुष का है। इसलिए कन्याओं माताओं के चार्ज में इनको नहीं रखा जा सकता, ओमराधे को निमित्त बनाया था। अब कोई ब्रह्मा की सोल जिसने सहन शक्ति का बड़े से बड़ा पार्ट बजाया माता की रूप, कोई फिर स्त्री चोले में प्रवेश करके जगदम्बा के रूप में संसार में प्रत्यक्ष होती। दाढ़ी मूछ वाले ब्रह्मा की पूजा नहीं होती। नाम वो भी ब्रह्मा है, ब्रह्मा ने बड़ी मां माने मां बड़ी मां, और नाम उसका भी जगदम्बा है, सारे जगत की मां, अर्थ तो एक ही हो गया। तो जगदम्बा का जो चोला है वो आत्मा अलग, और उसमें प्रवेश करके जो जगदम्बा का पार्ट बजाने वाली है, असुरों का संहार करने वाली आत्मा, वो अलग, वो है ब्रह्मा। इसी सारी बात एक आत्मा के ऊपर आ जाती है। कौन दादा लिख रहा है? ब्रह्मा। वो एक के पतित बनने से सब पतित, और एक के पावन बनने से सब पावन। एक की बुद्धि में समझ में सही तरीके से बात बैठ जाए तो सब की बुद्धि में बैठ जाएगी। एक की बुद्धि में बात नहीं बैठी हुई है गीता का भगवान कौन हुआ? जगदम्बा का चोला है उसकी भी बुद्धि में नहीं बैठी हुई। बाकी शिव बाबा की पार्टी की तो बात ही अलग है, तो अनिश्चय बुद्धि बनता ही नहीं है।
वैष्णो देवी तो पवित्रता का सब एक फोर जन्म पवित्र ही होता है।
एक की फोर जन्म में पवित्र नहीं कहेंगे, आखिरी जन्म में आकर के दृष्टि से संघ का रंग लगता है या नहीं लगता है?
जन्म
लेंगे तो दुर्योधन दुशासन बनेंगे
तो पाप करेंगे।
और जन्म में भी पाप तो लगता है, आत्मा के ऊपर विकारों की कट तो चढ़ती है।
ये तो कहते हैं कि वैष्णो देवी पवित्रता का इम्पोर्टेंट देवी है।
और 500-700 करोड़ आत्माओं के बीच में जो वो पवित्रता को धारण करेगी वो और कोई आत्मा के अंदर उसमें पवित्रता के संस्कार नहीं होंगे।
संगम की कृष्ण जन्म से
है,
संगम की कृष्ण जन्म होने से सुखधाम और शांतिधाम स्थापन हो जाएगा बोला। तो सुखधाम का जब स्थापन होगा जो छोटा सा संगठन होगा उस जगह पे तो दुखधाम का विनाश होना हुआ चाहिए ना।
जहाँ सुखधाम होता है वहाँ दुखधाम नहीं होता, जहाँ दुखधाम होता है वहाँ सुखधाम नहीं होता, जहाँ पतित दुनिया होगी वहाँ एक भी पावन नहीं होगा, जहाँ पावन दुनिया होगी वहाँ एक भी पतित नहीं हो। ये ब्राह्मणों का संगठन ऐसा बन जाएगा जिसमें एक भी विकारी पतित प्रवेश भी नहीं कर सकेगा।
तो जो सुखधाम स्थापन होगा उस समय तो उस जगह पे दुखधाम का विनाश होगा।
फिर वो बात
ठीक है, यही दुनिया होगा।
जहाँ सुख की दुनिया होगी उस सुख की दुनिया में घोर सोजरा ही सोजरा होगा, और जो दुख की दुनिया है वो अंधेरा ही अंधेरा, ज्ञान का नाम निशान नहीं। जहाँ भक्ति है वहाँ ज्ञान नहीं, जहाँ ज्ञान है वहाँ भक्ति नहीं। भक्ति मार्ग टोटल मुर्दाबाद। तब कहेंगे सुखदाम। जैसे दो पैर होता है सोच रहा ही सोच रहा, रात के 12 बजते हैं तो अंधेरा ही अंधेरा। सुखधाम का स्थान है ही जमुना का कंठ। फिर दुखधाम का स्थान भी वही जमुना का कंठ।
तो दिल्ली कब्रिस्तान और परिस्थान ये कब की बात है?
जब कृष्ण का जन्म, जब बाप की प्रत्यक्षता होती
उसी समय।
नेक्स्ट टू गॉड इज कृष्ण, जब प्रत्यक्ष होता है संसार में। नेक्स्ट टू गॉड नारायण, जब संसार में प्रत्यक्ष होता है। नेक्स्ट टू गॉड इज प्रजापिता या शंकर, जब संसार में प्रत्यक्ष होता है उसी टाइम को कहेंगे।
2018 से इंडिया में जो सिनेमा शुरू होगा थोड़ा शुरू हो जाएगा। दिल्ली
लड़ाई पहले शुरू होगी कि पढ़ाई पहले पूरी होगी? है, पढ़ाई पूरी होगी तो लड़ाई शुरू होगी, और लड़ाई तभी शुरू होगी, विनाश तभी होगा जबकि स्थापना हो गई होगी। पहले स्थापना फिर विनाश।
अपना बना आठ की संगठन की स्थापना या पूरा स्थापना,
पूरा कोई संपन्न बनते हैं एकदम। जो फाउंडेशन नई दुनिया का पड़ेगा वो अधूरों के संगठन का पड़ेगा या संपूर्ण के संगठन का पड़ेगा, किसका पढ़ना चाहिए? अरे संपूर्ण पुरुषार्थियों का फाउंडेशन पढ़ना चाहिए या अधूरे पुरुषार्थियों का फाउंडेशन पढ़ना चाहिए? संपूर्ण पुरुषार्थियों को पढ़ना चाहिए। तो संपूर्ण कितने हैं? आठ ही ऐसे हैं जो सजा नहीं खाते, बाकी तो दूसरे कुछ अधूरा पुरुषार्थ करते हैं जिसकी वजह से सजा खा जाते हैं। अभी जो अव्यक्त वाणी में बोला है कि तुम बच्चों को बाप दादा ने नई दुनिया की सौगात दी है, तो क्या इतने भी लाखों इस ज्ञान में चल रहे हैं सबको दे दिए? तुम वहां नई दुनिया में आना जाना करते हो ना, अच्छा ना, तो क्या वो सौगात सबको मिल गई? सबको तो नहीं मिल सकती।
में ये बोलता है कि बाबा सबको एक ही टाइम लेके जाएंगे, बोलते हैं
तो ठीक है,
फिर आठ इंजर रहते हैं और उसमें घुसा तो
वो बुद्धियोग से रहते हैं, वो बुद्धियोग से ऐसी स्टेज में रहते हैं। शरीर छोड़ करके जाने की टाइम की बात नहीं है, शरीर छोड़ करके सारे तब ही जावेंगे जब लास्ट में प्रजापिता सारी सृष्टि में हर मनुष्य मात्र हर प्राणी मात्र को शरीर छोड़ते हुए देख लेगा। वो ऑलराउंड पार्टदारी है, तब तक सब आत्माएं सूक्ष्म बतन में टिकेंगी, परमधाम कोई वापस नहीं जा सकता।
आठ भी छोड़ा हुआ
है,
अष्टदेह भी छोड़ा होगा,
कोई नंबर वार की स्टेज में
तो उसके बाद बाप ही आत्मा रूप से परमधाम जाएगा या यही ऐसे कंटिन्यू?
बाप पहले जाएगा, जो परमधाम पहले जाएगा वो सुखधाम में पहले आएगा, ये नियम नहीं है। जो शांति में ही नहीं जाएगा, जो मुक्ति की स्टेज को ही नहीं पावेगा, गति ही जिसकी नहीं होगी उसकी सदगति होगी? जिसकी पहले नंबर में गति हो, मुक्ति हो, उसकी पहले नंबर में सदगति हो। जो पहले नंबर में शांति धाम जावे वो पहले नंबर में सुख धाम आवे।
आप बोलते थे देवता कलयुग और द्वापर में जो देवता है और
देवता नहीं है, देव आत्मा है,
देव आत्मा और प्रजा है, उसमें क्या फर्क होता है?
उसमें फर्क ये होता है कि जो देव आत्माएं हैं उनमें ही ऊपर से आने वाली आत्माएं प्रवेश करती है। 33 करोड़ देवताएं गाये हुए हैं, उन 33 करोड़ में टाइम टू टाइम ऊपर से आने वाली दूसरे दूसरे धर्मों की आत्माएं प्रवेश करती रहती है और उनको कन्वर्ट करती रहती है और धर्मों
में।
इसलिए हिंदू ही कन्वर्ट होकर के सदैव विधर्मी बने हैं और धर्मों में गए हैं, दूसरे धर्म वाले कन्वर्ट होकर के कभी हिंदू नहीं बने। तो लास्ट में जब भगवान को सृष्टि पर आना होता है तब ऐसा ड्रामा बनता है कि सब धर्म वाले आर्य समाज में स्थान पा जाते हैं। आर्य समाज ही खुला निमंत्रण दे देते हैं, कोई भी धर्म वाला आकर के हिंदू बन सकता है।
वो तो देव आत्मा तू सचिव बने आते हैं तो बात आते हैं। आत्मा है ही ना, वो देव आत्मा तो है ही, वो क्यों बच्चों का भेद नहीं आ सकते, खाली इसमें आते हैं लोकर और कलि में आते,
वो फोर्थ कैटेगरी का सुख भोगते हैं अपर नंबर का, सत्युग में आने वाले फर्स्ट कैटेगरी का सुख भोगते हैं, त्रेता में आने वाले सेकंड कैटेगरी का सुख भोगते हैं, लेकिन द्वापर युग में जो देवता धर्म की सनातन धर्म की आत्मा आती है वो थर्ड कैटेगरी का सुख भोगती है, ऊंचे से ऊंचा सुख भोगती है। आज भी भारतवर्ष में ऐसे ऐसे परिवार हैं कि परिवार का मुखिया जो बोले उसको काट नहीं सकता कोई भी परिवार का सदस्य, इतना एका होता है, इतना एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक मत, लेकिन ऐसे परिवार प्राय है लोप है, ये देवी देवता सनातन धर्म प्राय है लोप नहीं होता है, बिल्कुल लोप हो जाए ये नहीं हो सकता।
जो पहले शांतिधाम जाएगा वही पहले सुखधाम में आएगा पुराना बाबा, तो यह भी बोला बाबा ने शरीर छोड़ते, बाप को शरीर छोड़ते हुए कोई भी नहीं देखेगा,
कोई शक है क्या? अगर उसको शरीर छोड़ते हुए कोई देखे फिर संसार में ये गायन कैसे चलेगा कि वो सबका बाप है, अमर है, अमरनाथ है, उसका जन्म और मरण नहीं होता है, तो बेहद की बात। बार बार निश्चय रूपी जन्म नहीं होता और बार बार निश्चय रूपी मृत्यु भी नहीं होती उसकी,
तो ये शरीर छोड़ के वो परंधाम जाता ही नहीं, हुआ
क्यों नहीं जाता, सबको मार के मरता है,
तो अंत में जाता है ना बाबा,
हाँ अंत में जाता है और सबसे आगे जाता है, जब दौड़ होती है ना तो कोई दौड़ने वाले इतने तीखे होते हैं पहले धीरे धीरे दौड़ते रहते हैं और लास्ट जो दौड़ होती है उसमें आगे निकल जाते हैं, ऐसा देखा कि नहीं, हाँ ऐसा होता है,
शुरुआत से ही आत्माएं जाते रहते हैं परमधाम शरीर छोड़ के,
शुरुआत से थोड़ा ही परमधाम जाती रहती है,
विनाश होने से शुरुआत से ही
सूक्ष्म वतन में टिकती है सब, तब तक टिकेगी जब तक वो प्रजापिता आ नहीं जाएगा,
तो उस समय के लिए सूक्ष्म वतन
जाएगा,
क्योंकि सूक्ष्म वतन है ही नहीं, बोला
सूक्ष्म वतन है ही नहीं, मैंने सूक्ष्म स्टेज है आत्मा, दैहिक रूप नहीं है,
सूक्ष्म शरीर,
हाँ जी लाइट का शरीर, जैसे स्वप्न में कहाँ कहाँ उड़ करके आत्मा चली जाती है, तो स्थूल शरीर चला जाता है क्या, जाता है स्थूल शरीर तो नहीं जाता,
लेकिन आत्मा भी नहीं जा सकता वो शरीर से,
है
आत्मा भी वो शरीर से नहीं कर सकता ना,
कौन से शरीर से,
स्थूल शरीर से नहीं जा सकता
है, स्थूल शरीर से नहीं जा सकती,
तो सूक्ष्म शरीर से जाती है ना,
हाँ सूक्ष्म शरीर कहीं भी जा सकता है, एक सेकंड में कहीं जाकर के वापस आता है,
वो सूक्ष्म शरीर है कि अपना मन की संकल्प है,
मन बुद्धि को ही तो आत्मा कहा जाता है,
संकल्प है ना बाबा, वही स्वप्न भी
मन बुद्धि को ही आत्मा कहा जाता है,
स्वप्न है वो तो संकल्प है ना आपका, अपना
संकल्प भी है ना, एक होता है चेतन मस्तिष्क और एक होता है अचेतन मस्तिष्क, अब चेतन मस्तिष्क में हम सब जागृत अवस्था में बैठे हुए हैं, जब निद्रा में होते हैं तो एक बीच की स्टेज ऐसी आती है कि अचेतन मन चारों तरफ दुनिया में घूमने लगता है,
आत्मा
आत्मा को ही मन कहा जाता है, जागृत अवस्था में भी ऐसी स्थिति होती है, हम कभी गहरे मनन चिंतन मंथन में होते हैं तो आंखें खुली रह जाती हैं और हम कहां के कहां पहुंच जाते हैं, आंखों के सामने से कोई निकल जाता है, हमें ध्यान ही नहीं रहता है कौन निकल गया, ऐसा होता कि नहीं? ऐसे ऐसे पता चलेगा कि शिव का पाठ खत्म हो गया, शंकर का पाठ शुरू हो गया है? ब्रह्मा का पाठ खत्म हो गया क्या?
नहीं, वो तो मुक्त में चलता है।
यज्ञ के आदमी ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों पाठधारी थे या नहीं थे? इनकी यादगार में ये झंडा बनाया जाता है, ब्रह्मा विष्णु शंकर की यादगार में तीन कपड़ों का झंडा बनाया गया। ये तीन शरीर रूपी कोई वस्त्र यज्ञ के आदमी भी थे ना? जो आदमी है वो अंत तक होंगे या नहीं होंगे?
होंगे, मुक्त में होंगे क्या?
वो समझने की बात है क्या? जो शैव संप्रदाय के होंगे उनके लिए लोप होने का बात ही नहीं है, जो और संप्रदाय के होंगे ब्रह्म समाजी होंगे उनको नहीं दिखाई पड़ेगा, समझेंगे नहीं? विष्णु संप्रदाय वालों को विष्णु ही सबसे ऊंचे दिखाई पड़ेगा, ब्रह्म समाजियों को ब्रह्मा ही सबसे ऊंचे दिखाई पड़ेगा, शैव समाजियों को शिव ही सबसे ऊंचा दिखाई पड़ेगा। इसलिए भक्ति मार्ग में जो शास्त्र बनाए हैं, शिव महापुराण जिसने बनाया उसने शिव की ही महिमा कर दी, हर जगह शिव को ही ऊंचा दिखा दिया। विष्णु महापुराण जिसने बनाया है उसने विष्णु को ही भगवान के रूप में दिखा दिया, और शंकर को और दूसरे देवताओं को सबको नीचा दिखा दिया। जैसे जगदम्बा की पुजारी है, देवी की पुजारी है, उन्होंने देवी को सबसे ऊपर कर दिया और ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों को नीचे कर दिया। ऐसे ही यहां चल रहा है। ब्रह्मा के लिए अभ्यतवाणी में क्या बोला है? जो सबसे नीचे तबके का देवता है, क्या बोला है? ब्रह्मा का पाठ स्थापना के कार्य में अंत तक लुदा हुआ है, दूसरा पाठ नहीं बजा सकते। जब तक पूरी स्थापना नहीं हुई है ब्रह्मा का पाठ चलता ही रहेगा। ब्रह्मा का पाठ नहीं है तो ब्रह्मा की हजार भुजाओं का गायन कैसे है? हजार भुजाएं अभी भी कार्य कर रही है, चलाने वाला है तब तो हजार भुजाएं चल रही हैं। चलाने वाला हो ही नहीं और भुजाएं अपने आप चलती रहेंगी, विष्णु के चित्र में भी चार भुजाएं हैं। चार भुजाएं माने कोई चार मददगार आत्माएं, उन चार मददगार आत्माओं को चलाने वाला भी कोई होगा कि नहीं होगा? नहीं तो विष्णु का सर काट दो, चार भुजाएं अपने आप चलती रहे। प्रजापिता भी दूसरों को नहीं समझा सकता सुना सकता कि मेरा ये पार्ट है, भले यज्ञ के आदि में पार्ट वो ही चलता रहा, वो पार्ट जिसके लिए मुरली में बोला है, रानियों को भगाया मक्खन चुराया, ये कथा कहानी प्रजापिता की है क्या? कहा ये कहानी ब्रह्मा की? ब्रह्मा की नहीं है। तो वो अंदर से पक्का निश्चय बुद्धि वो भी नहीं था, ये भगवान का पाठ वास्तव में किसका है? तो संयम नहीं सकती थी तो बुद्धि में बैठ ही नहीं सकता। सन 76 होते होते जो अवलंबन भक्ति है, तुम सब भक्तियां हो, मैं हूं एक राम, तो कौन ज्ञानी तू आत्मा हुई अवलंबन? और अव्वल नंबर भक्ति कौन हुई?
भक्ति हो गया
एक लंबा अव्वल नंबर भक्ति। हैं? अब्बल लंबर भक्ति दोनों माताओं के बीच में किसको कहे?
छोटी
मम्मी को अब्बल लंबर भक्ति कहे। अरे सुनने सुनाने वाली को कहा जाता है भक्ति। भक्ति में क्या होता है? सुनना और सुनाना, और समझने समझाने वाले में क्या होता है? ज्ञान। जो समझेगा वही दूसरों को समझाएगा, जो समझेगा पहले खुद धारण करेगा, खुद धारण करके फिर दूसरों को भी समझाएगा। तो समझने समझाने वालों में जो ज्ञानी तू आत्मा है मुझे प्रिय है, वो सिर्फ सुनने सुनाने वाले ज्ञानी तू आत्मा हुए या प्रैक्टिकल जीवन में पहले पहले धारण करके संसार के सामने प्रत्यक्ष होने वाले ज्ञानी तू आत्मा हुए?
प्रैक्टिकल में धारण कर।
ज्ञान होता है एक सुनना, दूसरा होता है समझना, तीसरा होता है सुनाना समझ करके, और चौथा होता है अपने जीवन में धारण करके दूसरों को सुनाना। तो ज्ञानी किसको कहा जाएगा? स्वयं धारण करके फिर दूसरों को सुनाएगा। तो सुनाना सुनाना है ये भक्ति, और समझना और फिर समझाना ये हुआ ज्ञान। तो ज्ञानी तो आत्माएं कौन हुई? हाँ, अंदर से जिसने समझ लिया, लेकिन बग 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 करके ढोल नहीं बजाया। भक्ति में क्या करते हैं? ढोल बजाते हैं, वाणी सुनाते हैं, या पहले धारणा करके दिखाते हैं। और सबसे ज्यादा वाणी चलाने का काम कहाँ कौन से धर्म स्थानों में होता है? अरे दुनिया में इतने धर्म स्थान हैं, उनमें सबसे जास्ती वाणी सुनने सुनाने का धंधा कहाँ होता है? पता ही नहीं। इस्लामी सुनने सुनाने का धंधा नहीं होता है। मस्जिद में चुपचाप खड़े होके बैठ के उकड़ू बैठ के नमाज पढ़ते हैं, वाणी नहीं चलाती जाती। मंदिरों में,
हिंदू धर्म
मंदिरों में सबसे जास्ती सुनना सुनाना होता है। आपने इसका मतलब सब तरह के धर्म स्थान देखे नहीं? बताओ, इस्लाम धर्म में तो सुनना सुनाना इतने जाती नहीं होते, ज्ञानी नहीं होते
हैं।
बनारस में, ये बनारस में कहा, धर्म स्थान पूछा। अरे हिंदू मुसलमान सिख है ईसाई बौद्ध जिनके धर्म स्थान होते हैं ना, उनका अलग नाम होता है। हाँ, गुरुद्वारे में सबसे जास्ती वाणी चलती है। अभी भी किसी गुरुद्वारे में चले जाओ, नौबत बज रही होगी। गुरुवाणी जो है हर गुरुद्वारे में 24 घंटे गुरुवाणी चलती ही रहती है, अखंड पाठ चलता है। तो सबसे ज्यादा वाणी कहाँ चलती है? गुरुद्वारे में। तो जो सुनने सुनाने वालों की अम्मा होगी, भक्तों की माँ होगी, उसका ज्ञान मार्ग में बाबा ने नाम क्या बताया है फर्स्ट क्लास भक्तिन का? अरे फर्स्ट क्लास भक्त का नाम बताया हुआ है, और फर्स्ट क्लास भक्तिन का भी नाम बताया हुआ है, मीरा। तेज बोलना मैंने ससो पंडे है संशय। तो मीरा ने अपने जीवन में क्या किया? मीरा के जीवन में क्या बात प्रसिद्ध है? विष पिया, निंदा का विष पिया। विष को प्यालो राणाई भेजो, सोसन मीरा हांसी रे, और खुशी खुशी पी गई। क्या राणा ने आदेश दे दिया ये पियो? क्यों 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 भेजो?
مر جائے.
ارے مر جائے تو ٹھیک ہے, لیکن اس سے ریزلٹ کیا ہوتا ہے؟ اسے پینے کا ریزلٹ کیا ہوتا ہے؟ کوئی کوئی ایسے بھی پسیلے لوگ ہوتے ہیں جو سانپوں کا بھی پی جاتے ہیں اور زندہ رہتے ہیں, اتنے بسیلے ہو جاتے ہیں. اچھا, جسے پینے والوں میں سب سے زیادہ گہن کس کا ہے؟ شنکر جی کا, وہ تو جگت پتا ہے. تو جو سہیوگنی شکتی ہوگی وہ کم ہوگی کیا؟ اس کا بھی پارٹ ہی ایسا ہے. کیا مہاکالی کا روپ دھارن کرتی ہے, اسر سنگھار بھی کہی جاتی ہے, اسروں کا سنگھار کرتی ہے. اس دنیا میں آٹھ کے علاوہ باقی سب کیا ہو گئے؟ پرشانتی سارے بھی بیچاری جیون بتانے والے ہو گئے, کوئی اپنی کرنی سے چوکتا نہیں ہے. تو ایسی بیوی چاہے نہیں دنیا میں, وہ ماں کے روپ میں پارٹ بجاتی. ایسے بچینے بچوں کو بھی گود میں دھارن کرتی ہے, ان کی پالنا کرتی ہے. وشے وکار سے ہوتا ہے وناش. کیا بیوچار سے کیا ہوتا ہے؟ دنیا کا وناش ہوتا ہے. اور اب بیوچار سے نئی دنیا کی استھاپنا ہوگی. اس لیے یہاں بولا ہوا ہے کہ برہما سرسوتی شکر لکشمی نارائن بنتے ہیں. جو برہما سرسوتی شکر لکشمی نارائن بنتے ہیں, تو جس نمبر کے برہما سرسوتی اسی نمبر کے لکشمی نارائن. ان کا سمبندھ دیکھو کیسا ہے. ان کا برہما سرسوتی کا وہ ان کی کیا ہے؟ بیٹی ہے. ہے تو بیٹی نا. سرسوتی برہما کی کیا ہے؟ بیٹی ہے. چاہے بیسک میں ہے تو کیا ہے؟ ارے بیسک میں بھی بیٹی ہے. عمرانی کیا تھی؟ بیٹی تھی. اور ایڈوانس میں بھی پہلے پہلے گیان کون لیتی ہے؟ ارے چندر پائی تو پہلے پہلے گیان لیتی ہے ایڈوانس میں, بھلے بچی ہے تو بیٹی ہوئی نا. تو بولا ان کو سمبندھ دیکھو کیسا ہے. 76 میں پرجاپتا کی ایج بھی پتا ہے, مرلی میں تو بتا دیا, کوئی 20 سال کوئی 25 سال کے. اس حساب سے 42 اور 47 میں ان کا جنم ثابت ہوتا ہے. تو پرجاپتا کی ایج 76 میں کیا ہو گئی؟
35.
تو کہاں 35 سال اور کہاں 9 سال کی بچی. مما نے شریر کب چھوڑا تھا؟ اومرانی مما نے 65 میں شریر چھوڑا, اور تھوڑے سمے کے بعد ان کے استھان پر پارٹ بجانے والی وہ مما گیان میں آ گئی. جیسے کہ دادا لکھراج برہما نے شریر چھوڑا, اور اسی وش جو برہما کا پارٹ بجانے والا مکھ پارٹ دھاری ہے وہ بھی اسی وش گیان میں آ جاتا ہے. اس سنسار کی جنگل میں شیر شیرنی کبھی خالی نہیں رہتی. 75 میں 76 میں دونوں ہی آتمائیں موجود ہوئے, پرجاپتا برہما بھی اور وہ ماتا بھی. ان کو دیکھو سمبندھ کیسا ہے. دنیا ان باتوں کو تو جانتی نہیں ہے. کیا دنیا کیا سمجھتی ہے؟ دنیا برہما سرسوتی کا سمبندھ کیا سمجھتی ہے؟ برہما سرسوتی پر پیدا ہوا. پیدا ہونے کا تم کیا لگاتے ہیں؟ گندے طریقے سے لگاتے ہیں, یا اچھے طریقے سے لگاتے ہیں؟ گندے ہو کے گندا طریقے سے لگاتے ہیں؟ واستو میں 84 جنموں کے بعد وہ آتمائیں تمو پردھان بن جاتی ہیں. کون آتمائیں؟ جو آج میں ستو پردھان تھے وہ انت میں تمو پردھان بن جاتے ہیں. پھر باپ آ کر ان میں پرویش کرتے ہیں, ان میں آ کر پرویش کرتے ہیں. برہما سرسوتی ایک جنم میں پرشارتھ کر کے پھر لکشمی نارائن بنتے ہیں. لکشمی نارائن, اب لکشمی نارائن ایک کا گائن ہے وشنو کے مندر میں یا چار آتماؤں کا گائن ہے؟ جہاں جہاں لکشمی نارائن کے مندر بنے ہوئے ہیں بھارت ورش میں, وہاں وہاں ڈبل مندر بنائے گئے ہیں. ایک نر نارائن کا مندر الگ ہوتا ہے لکشمی نارائن کے مندر میں, اور ایک لکشمی نارائن کا مندر الگ ہوتا ہے. تو جو نر نارائن کا وشنو کا مندر ہے اس میں کتنی آتمائیں ثابت ہوتی ہیں؟ وشنو کے روپ میں پارٹ بجانے والی نر نارائن چار آتما. تو یہ چار آتماؤں کی یادگار بتائی کہ پرشارتھ کر کے پھر لکشمی نارائن بنتے. جگت پتا جگدمبا کو بھی کیا کہیں گے؟ لکشمی نارائن سے اونچ پد نہیں ہے تو کم سے کم نیچ پد بھی نہیں کہا جا سکتا. کیوں؟ کیونکہ لکشمی نارائن تو سورگ کے مالک ہوئے اور جگت پتا جگدمبا کہاں کے مالک ہوئے؟ سارے جگت کے مالک. باپ کہتے ہیں جو وہ ہے سو تم ہو, مانا تت تم, تت مانے ہوا, تم مانے سامنے والا. تت کس کو کہا؟ تت مانے ہوا, ہوا مانے دور, مانے ستیگ میں جو لکشمی نارائن جنم لیں گے وہ بھی وہی ہے اور تم بھی, تم بھی وہی ہو, ان سے کوئی کم مرتبہ تمہارا نہیں ہے. کتنی بری باتیں ہیں, باقی شاستروں میں کیا ہے؟ وہ تو اترتی کلا کے شاستر ہیں, ان اترتی کلا کے شاستروں میں سچائی ثابت نہیں ہوتی. اوکے.